यदि आपका वीज़ा कोरोना वायरस महामारी के दौरान रद्द होने पर है तो शीघ्र ही कानूनी सलाह लेनी चाहिए ताकि आप ऑस्ट्रेलिया में कानूनी तौर पर रह सकें। क्वींसलैंड के नॉट फॉर प्रॉफिट रिफ्यूजी एंड इमिग्रेशन लीगल सर्विस के सॉलिसिटर और माइग्रेशन एजेंट टिम मेडिगन के अनुसार वीज़ा रद्द करने की स्थिति आमतौर पर वीज़ा की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर होती है, जैसे करेक्टर रिक्वायरमेंट्स या वीज़ा आवेदन पर गलत जानकारी प्रदान की गई हो।
Cancelled, a person becomes what's designated as an unlawful non-citizen in the migration law. That means they are subject to being put into immigration detention and removed from Australia.
मेडिगन की सलाह है कि गृह विभाग से वीजा रद्द करने का नोटिस ऑफ इंटेंशन आने पर तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।
The safest thing to do is as soon as you get that notice, at that day you try and get some advice about it, because sometimes the deadlines are very short. They can be as short as a few days or a week. Sometimes you get 28 days to respond. So yeah, it does vary depending on what type of cancellation it is.
Legal and New South Wales ke solicitor Kate Bones ka kehna hai ki galat jankari dene ka asar us vyakti ki nagrikta aavedan tak pad sakta hai. वो कहती हैं कि हाल के वर्षों में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों में विशेष रूप से इस प्रकार की स्थिति बनी है और वीजा कैंसिलेशन में भी वृद्धि हुई है।
The Department of Immigration has shown an increasing inclination to go back and very carefully examine all the information that was given, and there's often good explanation why someone at different points may have produced different documents or different information about their identity, where, for example, documents are lost, or where certain documents, like identity documents, aren't necessarily always issued or kept in a certain country, or as well where there is culturally less importance placed on something like dates of birth.
Dr. Danielle Ghespesh, Macquarie Vishwavidyalaya Samajik Nyay Clinic ke sansthapak aur nideshak hain. ये ऑन कैंपस क्लिनिक शरण चाहने वालों और शरणार्थियों के लिए कानूनी सलाह प्रदान करता है। डॉक्टर गेशपेश का कहना है कि यदि कभी किसी को जेल में 12 महीने या उससे अधिक की सज़ा हुई है, चाहे वो जेल गए या नहीं, फिर भी इससे अपने आप से ही वीज़ा रद्द हो जाता है।
Your visa is automatically cancelled. There's nothing you can do about challenging that decision, but then you can reapply directly to the minister for him or her to exercise the discretion to reinstate your visa. But for that whole time, you generally stay in immigration detention, and for clients, it takes up to a couple of years sometimes to go through that process.
केट बोन्स का कहना है कि पारिवारिक हिंसा के पीड़ितों को कभी कभी उनके पार्टनर्स द्वारा वीजा रद्द करने की धमकी दी जाती है, लेकिन वो ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं रखते हैं।
If somebody has needed to leave a partner where they're dependent on them as a temporary visa holder and there's been domestic violence involved, that it's the Department of Immigration's policy not to cancel the person's visa. But still, of course, it's important that the person's able to make that known to the Department of Immigration.
डॉक्टर गेशपेश कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वीजा रद्द करने के फैसले को चुनौती देने के आधार अलग अलग है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर उनका वीजा माइग्रेशन एक्ट की धारा 501 के तहत इनकार या रद्द किया गया हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स ट्राइब्यूनल, जिसे AAT कहते हैं, इसमें अपील करने का अधिकार है।
And that basically involves, you know, an independent member sitting in the same shoes as the minister, looking at all the facts of the case to see whether the cancellation was appropriate in that case. And with both instances, whether it's the automatic cancellation or the discretionary cancellation, you can also have the option to go to court to seek judicial review. And that is on very narrow grounds of whether there was a legal error in the way the decision was made to cancel your visa.
उधर मेडिगन का कहना है कि वीजा समाप्त होने से पहले जब तक आप AAT द्वारा अपनी समीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं या कोरोना वायरस महामारी के दौरान आपको देश छोड़ना है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में कानूनी रूप से रहने के लिए एक ब्रिजिंग वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
if a person is needing to make arrangements to leave, and if you can show there's no flights to your home country, or there's no, your government is not letting people into your home country, then that would be a pretty strong indication that you're still trying to make arrangements to leave Australia.
Red Cross के migration support programs के प्रमुख विक्की माओ का कहना है कि उनका संगठन लोगों को उनके वीजा की स्थिति की परवाह किए बगैर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज के साथ मिलकर लोगों को भोजन और कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये उन कैजुअल वर्कर्स के लिए एक बहुत ही आवश्यक सपोर्ट साबित हुआ है जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है, या अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो मुश्किल में हैं, या जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो रही है।
That's up to about $400 for a family. It's a one-off payment to try and get that assistance to as many people as possible. And it might not sound like an enormous amount, but what we do know is that the families were having to choose between food and medicine, for example, or work out how to pay their rent, that it's a really critical payment that allows them to do that.
कृपया ध्यान दें कि यहां प्रदान की गई टिप्पणियां सभी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर लागू नहीं होती हैं। यदि आप अपनी वीजा स्थिति के बारे में चिंतित हैं तो सबसे बेहतर होगा कि आप शीघ्र से शीघ्र कानूनी सलाह लें। मुफ्त कानूनी सलाह के लिए अपने स्थानीय राज्य या टेरिटरी में लीगल एड से संपर्क करें, और मुफ्त ट्रांसलेशन सर्विस के लिए 131450 पर फ़ोन कर आप अपनी भाषा में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रेड क्रॉस इमरजेंसी रिलीफ अस्थायी वीजा धारकों के लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए रेड क्रॉस की वेबसाइट पर जाएं। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।